ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा और घना है, आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। यस्मात् प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म शोक अग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःख औषधम् तत् अपि दुःखम् अतत् धिया अहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमत धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमत धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम्। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमत धियाहम् भूमन् भ्रमामि वदते तव दास्य योगम्। यस्मात् जिसके कारण इस संसार में अस्तित्व के कारण प्रिय अच्छा लगने वाला अप्रिय न अच्छा लगने वाला वियोग विरह संयोग तथा मिलन के कारण जन्म जिसका जन्म शोक अग्निना शोक की अग्नि से सकल योनिषु किसी भी प्रकार के शरीर में दह्यमान जलकर दुख औषधम दुखी जीवन के लिए उपचार तत् वह अपि भी दुखम कष्ट अतत धिया शरीर को आत्मा मानकर अहम मैं भूमन हे महान भ्रमामि घूम रहा हूँ जन्म मरण के चक्र में। बद कृपया उपदेश दें मैं मुझको तब तुम्हारा दास्य योगम सेवा कार्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: हे महान हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनके बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुख में जीवन से निकलने के अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। अतएव मैं सोचता हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। अपने ऐश्वर्यशाली पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था, जो सारे विश्व में फैली थी, लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती हैं। अतएव कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूप से प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अदूषित आनंदमय जीवन भोगना चाहता है तो उसे भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन श्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखमय है। यदि कोई वास्तव में आनंदमय सुख जीवन चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के स्तुति पर विचार कर रहे हैं। आप कथा जानते हैं, हिरण्यकश्यप का बहुत अत्याचार बढ़ गया था। जब प्रहलाद महाराज को वो मारने के लिए उद्यत हो गया, नृसिंहदेव प्रकट हुए। नृसिंहदेव प्रकट हुए तो बहुत जोर से आवाज हुई। वो आवाज इतनी भयंकर थी कि ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का कटा ही फट गया, ब्रह्मांड का जो आवरण है वह फट गया। लेकिन जब भगवान प्रकट होकर के और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिए। तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, वे भगवान का सेवा करना चाहते थे, अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन भगवान जिस रूप में प्रकट हुए थे और उनके क्रोध की जो मुद्रा थी और उसके चलते देवता लोग नजदीक नहीं आ सके, दूर से ही अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा हो रही थी कि अब तो हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, भगवान शांत रूप में अवस्थित हो जाए। तो सभी देवता वहां उपस्थित थे, ब्रह्म रुद्र पुरह सुरः, पुरह शरः, और ब्रह्मा शिव प्रधान थे, लेकिन कोई भी नजदीक नहीं आ सका। और ब्रह्मा जी नृसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को भेजे, लेकिन अदृष्टा श्रुत पूर्वात पूर्व अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात सानुपेया संकिता, लेकिन लक्ष्मी जी को भी भगवान के ऐसे क्रोध का अनुभव नहीं था। नारद जी तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि इनका तो मैं कभी दर्शन ही नहीं किया, इनके विषय में कभी सुना ही नहीं। वास्तव में लक्ष्मी जी को पत्नी है, उनका नित्य ही संयोग है, लेकिन भगवान के लीला शक्ति की ऐसी व्यवस्था है, नृसिंह देव के उस रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी नजदीक जाने का साहस नहीं किए। प्रहलादम प्रेषया मास ब्रह्मावस्थित मंतिके, प्रहलाद महाराज वहीं स्थित थे और उनको ब्रह्मा जी भेजे, तात प्रसमया उपेहि स्वपित्रे प्रसमय उपोहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। और प्रहलाद महाराज से कहने लगे कि बेटा तुम जा करके पिताजी का क्रोध शांत करो, भगवान के क्रोध को शांत करो। जब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को आज्ञा दिए तो तथेति सनकै राजन महाभागवतोर्भक, प्रहलाद जी ब्रह्मा जी के आज्ञा को स्वीकार किए, कहे कि ठीक है, यद्यपि प्रहलाद जी तो अर्भक हैं, बालक हैं, लेकिन महाभागवत हैं। उपेत्य भूकाये न नाम विधृतांजलि, वे नृसिंह देव के नजदीक गए और दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़ लिए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम, जब भगवान नृसिंह देव के चरणों में जाकर के गिरे प्रहलाद महाराज, ओ प्रहलाद महाराज को देख करके कृपया परिप्लुत, नृसिंह देव का हृदय कृपा से शराबोर हो गया। उत्थाप्य प्रहलाद महाराज को उठाए और उनके मस्तक पर अपना हस्त कमल रखे। भगवान के हस्त कमल के विषय में कह रहे हैं कि काला ही वित्रस्त धियाम कृताभयम, कि जो लोग काल रूप सर्प से त्रस्त हैं, जिनके बुद्धि उद्विग्न है, बहुत भयभीत हैं, और उनको अभय दान करने वाला। इस संसार में काल को बहुत खतरनाक बतलाया गया है, काल की उपमा सर्प से दी जाती है। जैसे क्रोध में सर्प किसी का पीछा करे तो व्यक्ति भयभीत होता है, रक्षा का उपाय चाहता है, तो वैसे इस संसार में व्यक्ति काल से भयभीत है, और किसी भी स्थान पर जाए, चाहे स्वर्ग में या दूसरे स्थान पर, काल से उसकी मुक्ति नहीं है। लेकिन संयोग से यदि भगवान के चरणों का आश्रय लेता है तो भगवान के हाथ उसको अभय दान प्रदान करते हैं। तो कह रहे काला ही वित्रस्त धिया कृताभयम, जिन लोगों की बुद्धि बहुत भयभीत है, जो बहुत उद्विग्न है काल के भय से, और उसको अभय दान करने वाले उस हाथ को प्रहलाद महाराज के मस्तक पर रखे। प्रहलाद महाराज के मस्तक पर जब अपने हाथ को रखे नृसिंह देव, तो प्रहलाद महाराज पर उसका क्या प्रभाव हुआ, इसको कह रहे हैं कि सतत कर स्पर्श धुता खिला सुबह। प्रहलाद महाराज के मन में जो भी संशय था वह समाप्त हो गया। प्रहलाद महाराज यद्यपि भगवान के पास जा रहे थे, लेकिन उनके मन में संकोच था कि हम तो नीच जाति में जन्म लिए हैं, असुर कुल में जन्म लिए हैं, हमारा अधिकार है कि नहीं भगवान को स्पर्श करने का, और इस विषय में उनके मन में संशय था। उनको उनके मन में बार बार यह भाव आ रहा था कि हमारा तो भगवान का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो करें कि जब भगवान उनके हाथ पर, उनके मस्तक पर अपना हाथ रखे, तब यह संशय समाप्त हो गया, उनकी असंभावना दूर हो गई। और सपद्य भी व्यक्त परात्म दर्शन, और जब भगवान प्रहलाद महाराज के मस्तक पर हाथ रखे, वो प्रहलाद महाराज भगवान के स्पर्श का अद्भुत अनुभव किए। भगवान का स्पर्श कितना सुखद है, और इसका वे अपरोक्ष अनुभव कर रहे, साक्षात अनुभव कर रहे। या एक अर्थ है कि भगवान के हाथ रखने का प्रभाव हुआ कि सबद सपदी अव्यक्त परात्म दर्शन, सपदी तत्क्षण तुरंत ही प्रहलाद महाराज के सह ज्ञान प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज को ज्ञान अर्जित नहीं करना है, वह तो सिद्ध ज्ञान है, लेकिन तुरंत व्यक्त हो गया, अभिव्यक्त परात्म दर्शन। जो शरीर और आत्मा का भेद है या परमात्मा का जो ज्ञान है, तो पूरा पूरा प्रकट हो गया। और तत्पाद पद्म हृदय निर्वृतो दधौ हृष्यतनु क्लीन हृदय अश्र लोचन। प्रहलाद महाराज जब भगवान के हस्त का स्पर्श मिला तो बहुत सुख अनुभव किए, और वे भगवान के चरणों के ध्यान में ही निमग्न हो गए। तत्पाद पद्म हृदय निर्वृत उदधौ, वे बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं और भगवान के चरण को अपने हृदय में स्थापित कर लिए, बस उसी पर उनका ध्यान था, और उसका प्रभाव हुआ भगवान के अनुभव का। हृष्यत तनु, शरीर में प्रसन्नता के हर्ष के लक्षण प्रकट हो गए, और क्लीन हृत, उनका हृदय बिल्कुल ढीला हो गया, वो गीला हो गया, और अश्रु लोचन, उनके आंखों से अविरत अश्रु धारा बहने लगी। और प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के ऐसे अनुभव कर रहे हैं, उनके चरण को ध्यान में रखे हैं, उनके चरण को हृदय में धारण किए हैं, और बिल्कुल प्रसन्न हैं, और प्रसन्नता के मारे उनके आंखों से अश्रु विसर्जित हो रहे हैं, और प्रेम के चलते उनका हृदय बिल्कुल ढीला हो गया है, कोमल हो गया है, मसृण हो गया है। और इस स्थिति में अस्तौसिद हरि मेकाग्र मनसा सुसमाहित, बड़े ही ध्यान से मन को एकाग्र करके और भगवान की स्तुति करने लगे और कह रहे हैं कि प्रेम गदगदया वाचा, स्तुति कर रहे हैं तो प्रेम के कारण उनकी वाणी लड़खड़ा रही है। और तन्यस्त हृदय क्षणा, भगवान पर ही उनकी दृष्टि लगी हुई है और हृदय भी भगवान के तरफ है, वो पूरा पूरा भगवान के तरफ दृष्टि करके और ध्यान करके वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति में वे कई एक बात बोले हैं, कई एक श्लोक में स्तुति दी गई है, लेकिन एक चीज आप पहले ही सुन चुके हैं कि प्रहलाद महाराज को एक कार्य दे करके भेजा गया है। वे ब्रह्मा जी के आज्ञा से नृसिंह देव के नजदीक पहुंचे और ब्रह्मा जी की स्पष्ट आज्ञा है कि हे तात, स्वामी के क्रोध को शांत करो। और प्रहलाद महाराज गए, पहले तो अपने अयोग्यता पर विचार किए, लेकिन भगवान के भक्ति का महिमा ध्यान करके और वे जा करके कहने लगे कि सर्वे यमे विधि करा तव सत्व धाम न ब्रह्मादयो वयम इव ईशन चो द्विजंत। वे कह रहे हैं कि ये जो थोड़े दूरी पर देवता लोग स्थित हैं, वे सब आपके भक्त हैं, विधि करा आपके आज्ञा का पालन करने वाले हैं और वे भक्त हैं, वे असुरों जैसा आपसे द्वेष नहीं करते हैं। क्षेमाय भूते उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतार है। और आपका जो भी अवतार होता है तो भक्तों को सुख देने के लिए होता है। इस संसार की अभिवृद्धि होती है और भक्तों को बहुत सुख का अनुभव होता है। वो सारे अवतार भक्तों को सुख देने वाले हैं, लेकिन आपका यह अवतार थोड़ा भक्तों को भी भय प्रदान कर रहा। तद यच्छ मन्यु, इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। देवता लोग थोड़ा भय अनुभव कर रहे हैं और वे असुर के चेतना के नहीं हैं, वे तो आपके आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो इसलिए अपने क्रोध को शांत कीजिए। कह रहे हैं कि आप जिस कारण से क्रोध किए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए क्रोध किए हैं, तो वह असुर तो मार दिया गया और असुरश्च हतः। और जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया तो सब लोग खुश हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। एक प्रश्न होगा कि किसी की हत्या से, किसी के वध से ये क्यों प्रसन्न है? किसी के हत्या से, किसी की मृत्यु से तो कोई प्रसन्न नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि साधु रपि वृश्चिक सर्प हत्या, ऐसा देखा जाता है कि जो दूसरे को कष्ट देने वाला है और उसके हत्या कोई दूसरा कर देता है तो साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सांप और बिच्छू हैं, बिच्छू हैं तो दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे को डंस दें तो उसको बहुत कष्ट होता है। तो सांप और बिच्छू का वध कोई कर देता है, उनको मार देता है तो साधु जन भी प्रसन्न होते हैं। तो लोकाश्च निर्वृत्त मिता प्रतियंति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। और इसलिए सब लोग प्रसन्न है, हिरण्यकश्यपु का वध हो गया है और प्रतियंति सर्वे, अब सब लोग इसी प्रतीक्षा में है कि आप कब अपने क्रोध को शांत करें। नृसिंह देव कह सकते हैं कि भाई हमारे क्रोध से ही दुनिया को खुशी है, तो हम क्या उसको शांत करें, जब इसी से लोग प्रसन्न है, सुख मिल रहा है, प्रसन्नता हो रही है, तो क्रोध को धारण करना ही उचित है। कि नहीं, क्रोध का जो कारण था तो अब वह समाप्त हो गया। हिरण्यकश्यपु के चलते लोग भयभीत थे तो वह तो मार दिया गया, तो अब क्रोध का कोई औचित्य नहीं है, अब इसको धारण करने का कोई कारण नहीं है। नृसिंह देव कह सकते हैं कि अरे भाई यह तो एक बात की बात हुई, अभी हो सकता है कि आगे भी ऐसा कारण उपस्थित हो जाए, लोग भयभीत होने लगे, तो भविष्य में सुरक्षा के लिए मैं क्रोध को अभी बना करके रखना चाहता, इसको धारण करना चाहता। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। रूपम नृसिंह विभ्याय जना स्मरन्ति, अब भविष्य में तो केवल आपके इस रूप का कोई स्मरण कर लेगा, उसी से उसका भय दूर हो जाएगा, अब आपके क्रोध की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो आप रूप प्रकट किए हैं तो भविष्य के लिए तो यही पर्याप्त है, केवल इस रूप का स्मरण करेंगे और भय दूर हो जाएगा, और इसलिए क्रोध को शांत कीजिए। मानो नृसिंह देव कहे कि सब भयभीत हैं, तो तुम भी भयभीत हो ना, यदि तुमको भी भय लग रहा होगा तो हम क्रोध को शांत कर लेंगे, क्रोध हटा देंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ना, हम आपके इस रूप से भयभीत नहीं हैं, आपका कितना ही भयानक रूप हो और उससे हमको कोई भय नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे अंदर भी भय है, लेकिन हमारे भय का कारण दूसरा है। कह रहे हैं कि त्रस्तस्मि हम कृपण वत्सल दुःसहोग्रः संसार चक्र कदनात् ग्रसताम प्रणीत। हम अपने कर्म बंधन के चलते असुर कुल में जन्म लिए हैं और संसार चक्र के दुख से मैं त्रस्त हूं, भयभीत हूं, कृपा करके हमारे भय को दूर करना चाहते हैं, तो प्रीतोपवर्ग शरण वयसे कदानु, आप कब हमको अपने चरणों में बुला लेंगे, हमको आपके रूप से कोई भय नहीं है, हम भयभीत है संसार चक्र से। ये जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है तो इससे मैं भयभीत हूं। और मानो नृसिंह देव पूछ सकते हैं कि संसार चक्र जन्म मृत्यु की श्रृंखला और इससे कैसे त्रस्त हो, इसमें क्या कठिनाई होती है। वह उत्तर दे रहे हैं कि जस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म या सजोग, यह भी पाठ है। जस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना, कह रहे हैं कि इस संसार की स्थिति है कि व्यक्ति शोक रूप अग्नि से दह्यमान जल रहा, शोक रूप अग्नि से वे जल रहा है। वे शोक का अवसर कैसे आ जाता है, तो दो चीज कह रहे हैं, प्रिय का वियोग होने से और अप्रिय का संयोग होने से। शोक जन्म लेता है जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को हम नहीं चाहते हैं, और वही उपस्थित हो जाता है, उससे सुख होता है। और जिस व्यक्ति या जिस परिस्थिति को हम नहीं चाहते हैं तो उसका संयोग हो जाता है, और जिसको चाह रहे हैं उसका वियोग हो जाता है। तो दोनों स्थिति में शोक जन्म ग्रहण करता है, शोक का जन्म होता है, और उसके चलते सब लोग त्रस्त हैं, जल रहे हैं। तो मानो कोई कह सकता है कि भाई एक परिस्थिति है, दुख की स्थिति है, शोक की स्थिति है, तो उसका कुछ प्रतिकार करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए, उसको दूर कर देंगे और फिर सुख आ जाएगा, सुख समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ना, इस संसार का ऐसा स्वरूप है कि दुख सदम तदपि दुखम, तो दुख का प्रतिकार है वह भी दुख स्वरूप है। भाई कोई दुख है, कोई समस्या है, तो उसका प्रतिकार कुछ कुछ बनाया गया है। जैसे कोई गरीबी में है तो धन अर्जित करेगा तो गरीबी उसकी दूर हो जाएगी, लेकिन धन के अर्जन करने में कम कष्ट नहीं है, धन के अर्जन करने में भी कष्ट है। अब मिल गया तो उसकी रक्षा करने में कष्ट है, और कहीं नष्ट हो गया तो वो तो बहुत भारी कष्ट का अवसर प्रदान कर देगा। वो कह रहे हैं कि इस संसार में दुख को दूर करने के कुछ कुछ उपाय हैं, लेकिन वे भी दुख स्वरूप है, उससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भी कोई कह सकता है कि भाई कोई भी कष्ट है और उसका मूल कारण तो पाप है, प्रायश्चित करेंगे पाप समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई भी कर्म कीजिए तो पूर्ण रूप से प्रायश्चित नहीं होता है, और कर्म का स्वभाव है कि एक नया बंधन लग जाता है। यह कर्म के स्वभाव में ही लिखा गया है कि कर्माणि दुखो दरकाणि, कोई कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट दुख ही होगा। तो कह रहे हैं कि दुख औषधम तदपि दुखम, ये दुख के प्रतिकार करने के जो उपाय हैं तो वे भी दुख स्वरूप हैं। तो अतद धिया हम भूमन भ्रमा में बद में तव दास्य जोगम, ये कह रहे हैं कि आत्यंतिक रूप से दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है आपका भक्ति योग, आपके सेवा का अवसर। तो वही उपाय बतलाइए कि कैसे आपके सेवा का अवसर प्राप्त होगा, सेवा का संयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इस संसार में दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, तात्कालिक स्थिति यह है कि प्रहलाद महाराज अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हे नाथ, कब हम पर आप प्रसन्न होंगे और अपने चरणों के नजदीक बुलाएंगे। नृसिंह देव कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हम अवसर पा करके समय आने पर अपने चरणों में बुला लूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हारे पिता का राज्य खाली हुआ है, बहुत बड़ा राज्य है, उसका कुछ दिन भोग करो। कि ना, हम इसको नहीं चाह रहे, क्योंकि वह चाहे राज्य हो या रंक की स्थिति हो, ये संसारिक चीज किसी को सुखी नहीं कर सकता। चाहे कोई भी दरिद्र है तो वह भी दुखी है, और वह राजा है फिर भी दुखी है। ये संसार की कोई भी स्थिति, कोई भी जोनी सुख नहीं प्रदान कर सकता, और उसका प्रतिकार भी दुख स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम में यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि इस संसार में दुख का प्रतिकार भी दुख ही है। विदुर जी की प्रसिद्ध उक्ति है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्य दुपार मम वा। कह रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, अरे संसार के जो भी लोग हैं तो सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्य दुपार मम वा। कह रहे हैं कि कितना हूं कर्म कीजिए, अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी उससे सुख की प्राप्ति नहीं है। अरे सुख की प्राप्ति की बात तो दूर है, वो दुख भी नहीं समाप्त हो रहा है। और बिंदेत भूयस्त दुख एव, बल्कि कर्म के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त कर रहा है तो वह भी दुख ही है। तो इस स्थिति में जो उचित चीज है वह बतलाइए। और इसी बात को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज के दुखो सदम तदपि दुखम, जो दुख का प्रतिकार है वह भी दुख है। तो कर्म करके प्रायश्चित करके हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, या राजा का पद प्राप्त करके हम सुखी नहीं हो सकते। और इस संसार के राज्य प्राप्ति की बात तो अलग है, व्यक्ति इंद्र के पद को भी प्राप्त करके सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति की चेतना है कि उसका कुछ कुछ प्रिय है, उसके मन में इच्छा होती है कि हमको यह पद मिला तो हमारा पद सबसे ऊपर रहना चाहिए, इसके बराबर ही या इसके आगे किसी का पद नहीं होना चाहिए। और तब तक उसको पता चलता है कि इससे भी ऊंचा पद है, तो ईर्ष्या के मारे वो जलने लगता है। वो चाहे वो मनुष्य समाज हो या देव समाज हो, शोक की अग्नि जल रही है। वो शोक की अग्नि का मूल कारण है अतद्धिया। हम लोग देहात्म बुद्धि किए अतद्धिया, तत् जो है उसको तत् कहेंगे और जो उसका विपरीत है वो अतत् हुआ, और उसी में हम अहम बुद्धि कर लिए। इस शरीर में देहात्म नहीं, शरीर में आत्म बुद्धि किए हैं, तो यही दुख का मूल कारण है। या अतद्धिया का एक अर्थ है कि यद्यपि इस संसार में दुख है, लेकिन व्यक्ति इतना उन्मत्त है, इतना अज्ञान से ग्रसित है कि दुख का अनुभव भी नहीं कर पाता। और कुछ लोगों का अज्ञान तो इस लेवल का है कि दुख में ही सुख का अनुभव करते हैं। मनुष्य जाति का एक लक्षण दिया गया है, दुखे च सुख मानिन, और दुख में भी सुख मानता है। कई एक घटनाएं, आप लोग किसी किसी पागल को देखे होंगे कि एकदम गंदा जगह पर बैठा है, कुछ प्लास्टिक जुटा लिया, वो भी हंसता रहता है। और इस संसार का जो हंसना है तो पागल के समान ही है। वो व्यक्ति अनुभव भी नहीं कर पाता है कि बहुत बुरी स्थिति में। अरे सामान्य लोगों की बात तो दूर है, इंद्र को जब सूकर बना दिया गया साप बस, तो उसी में संतुष्ट रहने लगे। तो एक अर्थ है अतद्धिया, वे दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते, यह स्थिति है। यह मुख्य अर्थ है कि अतद्धिया, जो भी इस संसार की दुखद स्थिति है तो उसका मूल कारण है देहात्म बुद्धि। हम अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं रखते हैं, इसी के कारण इस संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि बद में तव दास्य जोगम, कोई उपाय बतलाइए जिससे हम आपके दास्य कर सके, आपकी सेवा कर सके। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा तो सब प्रकार से सुखी हो जाएगा। या एक अर्थ है बद में तव दास्य जोगम, कि आप कोई उपाय बतलाइए कि आपसे संजोग बने, आप कृपा कीजिए कि हमको यह अवसर मिले कि आपके श्री विग्रह का संयोग प्राप्त हो। जब आपका संयोग प्राप्त रहेगा तो सब प्रकार के दुख से व्यक्ति मुक्त रहेगा। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के समक्ष इस संसार के स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं, और इससे मुक्ति के लिए भगवान के दास्य की प्रार्थना कर रहे हैं, उस उपाय की प्रार्थना कर रहे हैं जिससे भगवान का दास्य प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। प्रश्न, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की